बच्चों के सो जाने के बाद मनाल ने आदित्य को फोन लगाया। मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? थोड़ा मेरे बारे में भी तो सोच लिया करो, आदित्य ने शिकायती लहजे में कहा। क्या करूं तुम्हारे ये दो शैतान, अगर ये दोनों सो जाएं तभी तो तुम्हें फोन कर पाऊं। दोनों की बातें ही खत्म ही नहीं होती, हर वक्त बस तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं। पापा हमसे दूर क्यों थे, फिर मिलकर फिर से दूर क्यों चले गए? क्या वो दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे? क्या पापा हमें अपने साथ ले जाएंगे? पूछो मत, बड़ी मुश्किल से सुलाया है आज उन्हें, मनाल ने थके और भावुक स्वर में जवाब दिया। जानता हूँ माना, मुझे भी उन दोनों की बहुत याद आती है। मन करता है उड़कर आ जाऊं। उनके मासूम चेहरे सुबह शाम मेरे आंखों के सामने घूमते रहते हैं। लगता है जैसे मेरी जान ही उनमें बसती है, आदित्य की आवाज भर आई थी। ठीक है, आपको मेरी याद नहीं आती, सिर्फ बच्चों की आती है। कोई बात नहीं, मत कीजिए मुझे याद, मैं भी अब ना आपके पास आऊंगी ना फोन करूंगी, माना ने तुनक कर कहा। तुम्हारी याद तो कभी सीने से जाती नहीं, तुम तो मेरी सांसों में बसी हो। मैं और तुम अलग अलग थोड़े ही हैं, अदा और अदिति में भी तुम्हारी ही परछाई है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, लगता है जैसे आप बिजनेसमैन आदित्य राजवंश नहीं बल्कि शायर आदित्य राजवंश है। सही कह रही हूं ना मैं, माना मुस्कुरा कर बोली। जो तुम्हें अच्छा लगे वही समझ लो जान, अब वो दिन जल्दी आएगा जब तुम मेरी बाहों में होगी, हम चारों साथ होंगे। उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार है, अब तुम लोगों के बिना रहना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल बच्चों की तरह बात कर रहे हो, सब जल्दी हो जाएगा। आज तुम्हें फिर वही कॉलेज वाला आदित्य लग रहा है। फिर दोनों देर रात तक एक दूसरे से बातें करते रहे। आदित्य अनीता राजवंश के खिलाफ कदम उठाने से पहले कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। वो चाहता था कि हर सबूत उसके पास हो। उसने पूरी तहकीकात कर ली थी, दवाइयों की दुकान का मालिक ढूंढ निकाला था, कई दिनों तक उसकी गतिविधियों पर नजर रखवाई, समझा कि वो कैसा आदमी है, उसकी कमजोरी क्या है और कैसे उससे सच कबूल करवाना है। आदित्य को अंततः उसकी कमजोरी मिल गई। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है और आदित्य ने उसी पर वार किया। वो आदमी जो पहले झिझक रहा था आखिरकार पुलिस के सामने टूट गया। उसने स्वीकार किया कि अनीता उसकी बहन की सहेली थी। एक दिन बातचीत में जब अनीता ने जहर का जिक्र किया तो उसने बिना सोचे पैसे के लालच में दवा दे दी। आदित्य ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाकर उसकी गवाही के साथ अनीता के खिलाफ सारे सबूत जुटा लिए थे। हालांकि घटना को कई साल बीत चुके थे मगर अब भी कुछ कड़ियां साफ थीं। माना और मेहर के केस में भी अनीता की संलिप्तता सामने आ चुकी थी। आदित्य ने पुलिस के सामने मनोहर लाल और अनीता के गठजोड़ के पूरे सबूत पेश किए। जब मनोहर एक बार पकड़ा गया तो उसने तोते की तरह सब कुछ उगल दिया। अगले दिन दोपहर को पुलिस ऑफिसर आदित्य के साथ राजवंश हवेली पहुंचा। धर्मपाल जी दरवाजे पर ही मिल गए। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? पुलिस क्यों आई है, कोई परेशानी तो नहीं है? उन्होंने आशंका से पूछा। उन्हें डर था कि कहीं आदित्य किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। पापा, अधिराज कहाँ है, क्या वो घर पर है? आदित्य ने पूछा। अभी कुछ देर पहले ही बाहर गया है, क्या हुआ? प्लीज बैठिए, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, पुलिस ऑफिसर बोल पड़ा। धर्मपाल जी और भी परेशान हो गए। बोली, ऑफिसर आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? हमारे पास आपकी पत्नी मिसेस अनीता राजवंश के खिलाफ ठोस सबूत हैं, हमें उन्हें गिरफ्तार करना है। क्या क्या किया है मेरी पत्नी ने? आप लोग जरूर किसी गलतफहमी में हैं। धर्मपाल जी के चेहरे पर चिंता छा गई। पापा, अगर एक बात होती तो समझ आता। पहले उन्होंने आपकी पहली पत्नी आराध्या राजवंश को जहर देकर मारा, फिर मनोहर लाल के साथ मिलकर माना और मेहर को बर्बाद करने की साजिश रची। उन्होंने खन्ना फैमिली को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की सिर्फ इसलिए कि मेहर निशा से शादी करना चाहता था। क्या कह रहे हो तुम? उनका तो एक्सीडेंट हुआ था, सब मर गए थे, लाशें तक नहीं मिली थी। वो सब जिंदा है पापा। क्या, जिंदा है? तो कहाँ है वो लोग? अपने देश से बहुत दूर, अपनी पहचान नाम सब कुछ बदलकर, क्योंकि आपकी पत्नी मेरी सौतेली माँ उन्हें मारना चाहती थी और तो और मुझे भी खत्म करने की साजिश कर चुकी थी। ये सब तुम पहेलियों में क्यों कह रहे हो बेटा, सीधे सीधे सब बताओ। धर्मपाल जी लड़खड़ाते हुए सोफे पर बैठ गए, उनका दिल बैठा जा रहा था। और अगर ये प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो कृपया फॉलो करें, कमेंट करें, रेटिंग दें। आपके शब्द मेरे लिए प्रेरणा है।